संतप्त मन से शांत हूँ, इनके गुणों के दान में हमें क्या गाथाएं हुई थी 386 तक। अब उसके बाद की आत्मख्याति टीका अपन को पढ़नी है। अब वो व्यतिक्रमण आलोचना व्याख्यान का प्रकरण आरंभ हो गया है। असली में चारित्र संयम जिसे अपन कहते हैं, बस वो यही है। और हमने जैसे व्यतिक्रमण को आलोचना को पश्चाताप के रूप में स्वीकार किया है, वो वास्तव में पश्चाताप के रूप में नहीं है। आपको याद हो कि पश्चाताप को तो महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में असाता वेदनी के बंद के कारणों में गिनाया है। ताप आक्रंदन सूत्र है ना, वो तो असाता वेदनी कर्म के बंधन का कारण है। तो जो हम गए हम तो पछता रहे, बहुत पछता रहे, हमने बहुत पाप किए बहुत पाप किए, जैसे अपने जो भी आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ पढ़ करके हम अंदर से ऐसे ऐसे गदगद होते हैं, और जैसे हम बहुत पछता रहे हैं, कोई रोने ही लगते हैं। इसका नाम प्रतिक्रमण नहीं है, इसका नाम आलोचना नहीं है, इसका नाम प्रत्याख्यान नहीं है। वो कहते हैं कि जो भी भाव कर्म ने करने के अथवा कर्म के फल के यानी पूर्व कर्म के उदय में जो भी भाव हमारे हुए हैं, उन भावों से एकत्व ममत्व तोड़ना, ये मैं नहीं हूं, ये मैंने मेरे नहीं है, इसका नाम तो हो गया मतलब एकत्व ममत्व तोड़ा ना, और फिर एक मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, तो कर्ता नहीं हूं तो कर्म चेतना से रहित हो गया, और भोक्ता नहीं हूं तो कर्म फल चेतना से रहित हो गया। ऐसा अनुभव करना कब, कि जब कर्म के उदय में उसके फल को भी हम भोग रहे और कर्तृत्व के विकल्प में भी चल रहे, तब की बात है। जब ये कर्तृत्व के विकल्प भी नहीं रहेंगे और कर्तृत्व का कर्म फल भोगने की सुख दुख रूप वेदन भी नहीं रहेगा, तब तो संपूर्ण हम ज्ञान चेतना रूप परिणमित हो जाएंगे। इसे मैं ये कहते हैं केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएंगे। लेकिन जब चौथे गुण स्थान से ज्ञान चेतना शुरू होती है, और जिन्हें हम कर्म और कर्म फल चेतना कहते हैं, जो अज्ञान चेतना है, वहां से जो काम वो खत्म होती वहां से शुरू होता है, तो वो श्रद्धा के लेवल पर ही होता है। माने हम उसके हमारे चित्त में उसके कर्तृत्व की स्वीकृति ही नहीं है, तो अपराध की स्वीकृति कहां हुई। अरे हम पछता रहे पछता रहे पछता रहे है? वो तो कहते हैं कि आज तक जो भी कर्म हमने भूतकाल में किए, तो वे कहते किए ही नहीं है ना, मैं उसका कर्ता हूं ही नहीं। तो कर्ता तो वे ऐसा जोड़ते, पहले कर्म का जो उदय आया था ना, उस कर्म के उदय में जो भाव हुए थे वे तो भुगत थे। ऐसे ही फिर भविष्य काल में मेरे ऐसे भाव भी मैं करूंगा ही नहीं, मेरे में हुए ही नहीं, होते ही नहीं है, और ये वर्तमान में जो हो रहे हैं उनसे भी मैं पृथक हूं। ऐसे वर्तमान के समय में ये तीनों को एक साथ अपना एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व से वो इनकार कर रहा है। ये सच्चा प्रतिक्रमण, सच्ची आलोचना और सच्चा प्रत्याख्यान है, ये बात यहां कह रहे हैं। देखो जो आत्मा पेज नंबर देखो है ना 514 तो समय सार में है, पर इसमें बताऊं मैं आपको कितना है, हाँ 35 पेज है। जो आत्मा उद्गल कर्म के विकास से विपाक से हुए भावों को से स्वयं को छुड़ाता है, दूर रखता है, वह आत्मा उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्मों का प्रतिक्रमण करता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है। वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत उत्तर कर्मों का प्रत्याख्यान करता हुआ स्वयं ही प्रत्याख्यान है, और वही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक को अपने से भिन्न अनुभव करता हुआ है ना, इसका मतलब है तो वे हुआ आलोचना है। ये जो चार गाथाएं पढ़ी थी तो इन तीन गाथाओं में एक में प्रतिक्रमण, एक में प्रत्याख्यान पर एक में आलोचना थी, और फिर चौथी गाथा में तीनों का एक साथ उपसंग होता कि मैं इन रूप नहीं हूं। बस ये चार गाथाओं में जो अलग बात कही थी उन्होंने आत्मख्याति टीका में उनको एक वाक्य में ही बांध लिया, भले ही वो वाक्य चार लाइन का है। जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक से हुए भावों को स्वयं को छुड़ाता है, छुड़ाता है माने ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूं, है ना, माने दूर रखता है। वह जब है तब तो दूर रखने की बात आई ना श्रद्धा के लेवल पर। वह आत्मा उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्मों का प्रतिक्रमण करता हुआ, वो कहते भाव का कारण कौन है, पूर्व कर्म का उदय, यानी जो भाव भी अभी पैदा हुए हैं तो पहले कर्म का बांधे थे, उन कर्म का उदय हुआ उसमें वे भाव हुए। तो जब मैं उन भावों से अपनत्व का इंकार करूंगा तो पूर्व कर्म में मतलब मैं नहीं हूं, तो फिर मैंने किए से वो बात खत्म हो गई ना, इसलिए कहते मैं वहां से लौट आया। प्रतिक्रमण माने मैं वहां से अपन उसके कर्तृत्व से लौट आया, कभी तुमने छोड़े तो है नहीं कि छूट जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, छूट जाएंगे कि बस छोड़े हैं नहीं, छूट जाएंगे कर रहे हो। वो ये कहते हैं पहले श्रद्धा में तो छोड़े हैं क्या, ये हम कह एक जैसे अपन कहते हैं ना कि अपन से जीवन में बहुत अच्छे काम भी होते हैं बुरे काम भी होते हैं, तो अपने नेचर में अभी ऐसा है कि बुरे काम मैंने किए ऐसी स्वीकृति हमारे चित्त में नहीं होती है, वो तो हो गए भूल से, मैंने किए थोड़ी है, गलत कॉपी में परीक्षा की में वो तो गलत लिखा गया, मैंने थोड़ी उसका कर्ता नहीं बनता, और अच्छा है तो मैंने लिखा, ऐसा होता है ना। तो जब हम दोनों ही काम हमने एक से किए और उन दोनों कामों में एक को हम स्वीकृत करते हैं और एक को अस्वीकृत करते हैं, इससे एक बात सिद्ध हो गई कि हमारे पर्याय में हो रहे भी भाव फिर भी उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है ना, क्योंकि अशुभ को तो हम करते ही हैं अस्वीकार, उसके हम कर्तृत्व को अपने माथे पे ओढ़ते ही नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का कोई इष्ट का वियोग हो गया, समझे ना, कोई इष्ट व्यक्ति जो उनका था, पुत्र था, गुरु था, शिष्य था, पिता था, उसका वियोग हो गया, मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु में जो उसको शोक हो रहा है तो आंख से आंसू भी आ रहे हैं, फिर भी वो इस बात को उस वक्त फीलिंग कर रहा है कि नहीं, कि देखो जो हुआ हो गया वो हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, वो तो पूर्व कर्म के उदय का परिणाम था। किन्तु तुम्हें एकदम गुस्सा आया और तूने एकदम जोर का एक झापड़ लगाया तो वो एकदम गिर के बेहोश होकर गिर गया, और चूंकि वो इसके किनारे पर खड़ा था तो वहां से नीचे गिर गया छत पे से, और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। तो अदालत में लाया कहता साहब मैंने नहीं मारा, जबकि बराबर उसकी फिल्म है और जो उसे दिखाई जा सकती है कि देख देख तेने किस तरह से इसे मारा और किस तरह से गिरा और ये किस तरह से मर गया, लेकिन उसकी इस तथ्य को वो अदालत भी स्वीकार करती है कि इसने उसे मारा कि इसके हाथ से वो मर गया। सचमुच इसने उसे जो चांटा मारा था वो जान से मारने के लिए नहीं मारा था, ख्याल नहीं ना, पर थोड़ा इसको फीलिंग हो गया इसके लिए। पर वो भी कहां मारा था, वो तो कहता उस वक्त मेरे को इतना गुस्सा आ गया कि बस मैं अपने को रोक ही नहीं सका, कि रोक क्या नहीं सका, रोकने का विकल्प आने का ही अवसर नहीं था, इतना फटाफट हुआ, ऐसा कहता कि नहीं कहता कि वो कब हो गया मुझे पता नहीं, और बस मैं तो जब देखा तो अपने को पछता ही रहा था। मैंने तो उस क्रोध के काल के बाद अपने को पछताता ही अनुभव किया, समझ गए ना। तो जैसे उस भूतकाल के हुए अपने अपराध को पाप को वो अस्वीकृत करता है ना, तो मैं कहते इतनी सी बात है, ऐसी तुम शुभ कुछ हो गया हो तो उसको भी तुम अस्वीकृत कर दे। तो ये यहां से ही धर्म की शुरुआत होती है, मैंने श्रद्धा के लेवल पर भूत भविष्य और वर्तमान के कर्मों की अस्वीकृति। जैसे कहते हैं मैं प्रत्याख्यान करता हूं, और अपने मजाक भी उड़ाते हैं कि रोजाना प्रत्याख्यान करते जाते हैं, कहते जाते हैं कि गलती हो गई अब मैं नहीं करूंगा, आज तक जो हुआ सो हुआ, अब अक्ल से नहीं करूंगा, ऐसा बोलते जाते हैं, फिर वो करते जाते हैं कि जल छान जीवानी कीनी पशु भूपुंडार जो दीनी, और फिर डालते जाते हैं। तो अपने कहते हैं कितना आर्टिफिशियल है, कितने नालायक हैं, एक झूठे हैं, इनको कुछ समझते नहीं हैं। लेकिन समझदारों में भी ऐसा होता है, क्योंकि वो जो जीवन में से जो अनादिकालीन अभ्यास है ना, वो इतना आसानी से निकल नहीं जाता, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं निकला ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं ना। जैसे कि आज तक जो हम मानता मानते थे, और फिर हमने एक किया कि एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है, इसको आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहते हैं हम, जो तीर्थंकर प्रकृति के कारण में गिना है ना, आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, और आभीक्ष्ण संवेग भी है, संवेग को भी आभीक्ष्ण विशेषण साथ में जोड़ना, उसके निरंतर पर के कर्तृत्व से वैराग्य का भाव और निरंतर ज्ञान में उपयोग को लगाना। तो मैंने उसको गहराई से अध्ययन किया, तो उसमें 16 कारण भावनाओं में हम जाके देखते हैं तो कई भावनाओं में लगातार ज्ञानोपयोग की ही बात है, आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की बात है, माने स्वाध्याय की ही बात है। यहां तक कि जैसे प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति क्या है, अरहत भक्ति, और क्या है दूसरी, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति और प्रवचन भक्ति, चार भक्तियां हैं ना। तो बुद्ध को वहां पर सिद्ध भक्ति नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति बंद के प्रकरण में सिद्ध भक्ति नहीं है, साधु भक्ति नहीं है, कौन कौन सी है, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति और प्रवचन भक्ति। वो नवोकार में जो 47 शरणम कहा था, तब आचार्य उपाध्याय उनको छोड़ा था, अरहंते शरणम प्रपद्यामि, सिद्धे शरणम प्रपद्यामि और साहु शरणम प्रपद्यामि छोड़ा था ना, और केवली पणत्तो धम्मो शरणम प्रपद्यामि। और यहां पर बुद्धि पूर्वक क्या कहा, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति और सिद्ध भक्ति और साधु भक्ति छोड़ दी, और प्रवचन भक्ति एक जोड़ दी। उसमें तो मैंने वहां समझाया है कि क्यों, क्या नवकामंत का जब प्रवचन करता हूं तो बहुत विस्तार से बताता हूं क्यों छोड़ दिया उनको। अब यहां क्या है, वो हमको अरहंत भी दिव्य ध्वनि से समझाते हैं, आचार्य भी हमें समझाते हैं, उपाध्याय भी हमें समझाते हैं और प्रवचन भी हमें समझाया था, तो तीनों स्वाध्याय रूप हुए। वो साधु जो अपने ध्यान में मगन हैं, वे सिद्ध भगवान जो मोक्ष में चले गए, उनका हमारे स्वाध्याय से कोई सीधा संबंध
नहीं है। इसका मतलब ये चार भक्तियों में स्वाध्याय की बात ही कर रहे हैं। पर जय जयनाथ परम गुरु ऐसे बोलने का नाम भक्ति नहीं है। इनके प्रति जो हमारे चित्त में महिमा बंत है, इनसे जो हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसके जो चिंतन की धारा, ऐसे इन चार में ऐसे आवश्यक, आवश्यक का परिहानि है ना, उन आवश्यकों को छोड़ना। तो मुनियों के भी छह आवश्यक हैं और गृहस्थों के भी छह आवश्यक हैं, तो इनमें किनके लेना? भाग्य से दोनों में स्वाध्याय है ना। देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयमन तपा और उसमें समताधर बंधन करें नाना तुति, उसमें भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय वहां भी एक स्वाध्याय कोई पकड़ा, मेरा मतलब यह है। और क्या, अब दो में से किनको लेना? गृहस्थों के वाले को लेना कि अभी मुनि वालों को लेना? तो उसमें भी हम गहराई में जाएं तो हम निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध है और आश्रव चौथे गुणस्थान से शुरू होता है, उसके पहले नहीं होता। और आठवें गुणस्थान के छठवें भाग तक होता है। और तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी प्रकृति है। निरंतर बंधी का मतलब समझते हो कि जब वो बंधना शुरू होती है तो बंधती रहती, निरंतर बनती रहती, निरंतर बनती रहती है। वो नरक में भी चला जाए तो वहां बनती रहती है। अभी नरक में भी सोलह ग्रहण भावनाएं आपको कहां दिखेंगे? हिसाब हिसाब में मिलान करके देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी नहीं ना आपको बैठेंगी नहीं। तो इसलिए उन्होंने माने वो श्रावक, उसकी जो सोलह चीजें हैं वो ऐसी हैं कि जो वो श्रावकों में भी पाई जाती हैं और मुनियों में पाई जाती हैं। कुछ श्रावकों में पाई जाती हैं और कुछ मुनियों में पाई जाती हैं और कुछ मुनियों में नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि शील वृतेशो अनतिचार, शील और व्रतों का अतिचार से रहित। तो अब सात शील व्रत हो गए और अनुव्रत, तो इनका निर्तिचार पालन करना, जैसे गृहस्थी की बात हो गई ना, व्रतों और शीलों में निर्तिचार पालन करना, ये इसमें आ गई। अब अपने बहुत स्पष्ट हैं बारह व्रतों में कि दिग्व्रत देश व्रत अनर्दन व्रत, इनको हम देशवृत कहते हैं और फिर वो सामायिक उसको शिक्षावृत कहते हैं, कहते हैं ना दिग्वृत देशवृत और शिक्षावृत। तो ये जो दिग्वृत देशवृत सात शील प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने मतलब अनुवृत्तियों को, तो मतलब सम्मतिष्ण से शुरू हुई फिर अनुवृत्त भी आ गए उसमें और फिर मुनि की भूमिका तक चले जाते हैं तो वहां महावृत भी आ जाएंगे। वहां भी महावेद रूप में हो जाएंगे और वहां भी वो बनती रहेंगी। तो अब मैंने देखा सर्वार सिद्धि में और आदवार्तिक में भी, तो वहां इस शील का अर्थ बस ऐसा सामान्य क्रोधाति से रहे ऐसा किया, जबकि स्पष्ट अनतिचार शील वृतेशु अनतिचार, शील और व्रतों में जो अतिचार हैं उनसे रहित। और फिर उन्होंने जब तीर्थंकर प्रकृति के वर्णन किया उसके बाद शील और व्रतों के अतिचार गिनाए हैं, मैंने उन व्रतों की भी चर्चा की, शील व्रतों की भी चर्चा की और उनके अतिचार पांच पांच होते हैं वो गिनाए हैं। अब स्पष्ट है कि मुझे तो भी यही जचा कि यही है। तो मैंने उन दोनों दिग्गज आचार्यों का भी वो अर्थ जो उन्होंने किया है उसकी उपेक्षा करके मैं तो जी अपना ही अर्थ लिखा क्या है? हम गुणवृत्तों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अनुवृत्त गुणवृत्त और शिक्षावृत्त तीन है ना, तो गुणवृत्त और शिक्षावृत्त को क्यों आप हटाना चाहते हैं? अकेला क्रोधादि से रहत वो तो कॉमन है ही, वो तो सब में तो, और यहां तो बंध का प्रकरण चल रहा है आखिरकार, प्रकरण तो बंध का चल रहा है ना, कैसे तीर्थंकर प्रकृति बंधती है कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, तो जितने लोगों को सोलह कर्म भावनाएं होंगी, जो भावनाएं भाएंगे, तो सोलह की सोलह जरूरी हैं कि देखो जरा विचार करके सोलह की सोलह हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वास्तव में बात तो ऐसी है कि चौथे गुणस्थान से लेकर आठवें गुणस्थान के छठवें भाग तक जितने भी प्रकार के विशुद्ध परिणाम हो सकते थे उन सब को उन्होंने उन कारणों में गिना दिया। क्या हो तो नहीं हो, क्योंकि निरंतर बंदी है ना, तो वो जब वहां से वहां तक पहुंचेगा और वो बनती रहेगी तो वो कभी ये भाव होगा, कभी वो होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, है? तो सोलह की सोलह भावनाएं निरंतर बनी रहेंगी, इसका क्या है? तो असली बात तो ये है, एक दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है। दर्शन माने सम्यक दर्शन और उसके साथ की होने वाली विशुद्धता, एक तो ये अनिवार्य है, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि लिखा है चौथे गुणस्थान के पहले बनती ही नहीं है, तो विशुद्ध सम्मा दर्शन का होना जरूरी हो ही गया। अब उसके बाद दूसरा मुद्दा है कि एक है ना प्रभावना, जैन धर्म की प्रभाव प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान तत्व ज्ञान सबको प्राप्त हो जाए, वो उन तक पहुंचाने की भावना उनकी बहुत उत्कृष्ट जिन जीवों की होती है। अब वो साधर्मियों से बात्सल्य हो गया ना, तो साधर्मी का बात्सल्य, जैन दर्शन की प्रभावना करना, और दूसरा ये स्वाध्याय आभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर इसमें वृत्ति रहेगी तो अरंति से तीर्थंकृति बन जाती है, बंधना आरंभ हो जाती है। अब बंधना आरंभ हो गया फिर वो बनती रहेगी, अब उसमें तो हमेशा वो होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। एक नियम है कि वो केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में बनती है। वो मैं बहुत मार्मिक तत्व की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जैसे आप लोग पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तत्वाधिक पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बातें आएंगी, तो आपकी सब समझ में आएंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, लेकिन तो भी ध्यान दिलाने से अच्छी समझ में आती है कि जो सोलह कारण भावना भाएंगे और बराबर सोलह कारण आते हैं, तो महीने भर के पूजन करते हैं, उनके भक्ति करते हैं, उसकी माला जपते हैं, उसकी क्या क्या बोला जाता है उसके हिसाब से, और वो बराबर तो उनको बनेगी ना वो तीर्थंकर प्रकृति। भाई सोलह कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बनने का कारण है तो क्यों नहीं बनेगी, लेकिन सोलह कारण भावनाएं बंध का कारण है, सोलह कारण भावना की पूजा बंध का कारण नहीं है, घबराना नहीं, उस तीर्थंकर प्रकृति का बंधन है। तुम तो पूजा करते हो, जाप करते हो, वे तो ये कहते हैं कि अरहंत भक्ति, तुम तो अरहंत भक्ति की पूजा करते हो। अच्छा ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी शर्त यह है कि वह केवली के पाद मूल में होना चाहिए, केवली या शुद्ध केवली के। अब तुम समझ रहे हैं सबके सब हम कर रहे हैं तो हमें तो बंध ही जाएगी, हमने कितनी भक्ति से करी है। अब एक को भी केवली का पाद मूल प्राप्त है तो कम से कम तुम्हें तो नहीं मिलेगी, हमें मतलब हमें तुम्हें सब उत्तम समझ नहीं क्या कह रहा हूं मैं, कि तुम नहीं बंधेगी सिद्ध कर रहे कि बंधेगी सिद्ध कर रहे, ना हम बंधेगी सिद्ध कर रहे ना बंधेगी सिद्ध कर रहे, हम तो जो परिस्थिति है उस पर गंभीरता से पूरा विचार करके वो स्वरूप समझा रहे हैं, तो हम पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं, कि वो भी शर्त पूरी तो होनी चाहिए ना, और वो भी सोलह कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति आरंभ होने की शर्त है, निरंतर बंध रहने वाली प्रकृति है, वो जीव नरक में पहुंच गया राजा शरण पर, वहां बंध रही उन्हें अभी वो प्रकृति, समझ में ना, तो वो वहां कहां केवली का पाद मूल है और कहां शुद्ध केवली का पाद मूल है, शुरुआत जहां जब शुरू की थी तब भगवान महावीर के शरण में थे, केवली के शरण में थे, और गौतम स्वामी की शरण में थे, केवली और केवली दोनों की शरण में थे, पादमूल में थे। अब उसमें इतना और है छायक संबंध संध्या उनको तो रस्ते में भी बनती रहती है। कौन सी बोलते हैं वो, क्या नाम, गत्यानुपूर्वी, उस काल में भी बनती रहती है। और यदि वो इसके और ज्यादा नीचे जाए तीसरे नरक तक जाता है और वहां भी तीसरे बिंदी बांधता रहता है, तो वो उसमें फिर सम्मदर्शन से जा नहीं सकता पहला तीसरे नरक में, तो फिर वहां वो सम्मदर्शन छूट जाता है। वो छह उपशम सम्मदर्शन, छह उपशम सम्मदर्शन होगा, सहायक नहीं होता है, तो उतने काल में उसका वियोग हो जाता है बनने का। और फिर जो वहां शुरू हुआ तो फिर बनना शुरू हो जाती है। तो फिर ये तो बात क्या कहना चाहते हैं आप कि जितने हम लोग कर रहे हैं ये सब बेकार है, हमें नहीं बनेगी। अरे हम तुमसे हमें क्या ले तकलीफ है कि तुम्हें ना बने, हम तो सिर्फ बता रहे कि तुम उस बात पर गंभीरता से विचार करो। और भाई साहब जो तीर्थंकर प्रकृति के बनने का कारण को बता रहे हैं, मतलब आसई कर्मों के बताए हैं, नामकर्म के दो सूत्र और हैं, कौन सा, शुभ नाम और अशुभ नाम। तो तीर्थंकर प्रकृति शुभ नाम में आ गई ना, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेशल बता दिया। तो उनने तो आठ ही कर्म के, शुभ अशुभ के, सबके भेदने कर्मों के कैसे कैसे भाव हों, तो कौन कौन सा कर्म बनता है वो गिनाए हैं। तो ये कर्म के बनने का, आश्रम होने का जो कारण गिनाए हैं, तो तुम अच्छे बड़ी सोच सोच समझ के कर्म बांधो, अच्छा अच्छा आश्रम करो, इसके लिए बताए हैं। क्यों, आश्रम करने की प्रेरणा देने के लिए तुम्हें बताए हैं कि हमें तो तीर्थ प्रकृति बांधने की प्रेरणा मिल गई। तो इसके लिए सूत्र जी में वो बताए हैं सब कि हमको आश्रम नहीं करना किसी भी कर्म का, क्या कि यहां तक कि ये जो तीर्थंकर प्रकृति जैसा कर्म बांध है, ऐसे भावों को भी हमने आश्रम अधिकार में रखकर ये बताने की कोशिश की है कि आश्रम दुख कारे गनेरे बंत। उसने सारे आश्रमों के लिए कहा कि वे घना दुख देने वाले हैं, तभी तीर्थंकर प्रकृति वाला आश्रम भी घना दुख देने वाला है, एक सुख देने वाला है, कहां लेकर आ गई। जो तुम जो हमने मुंह में इतना एकदम गलगलिया छूटता है और पानी, इसके लिए नहीं वो बनाया है, उनने आश्रम अधिकार में रखकर ये बता, उससे तुमको चित्त में विरक्ति आवे इसके लिए बताया है। काहे के लिए बताया है, कि तुम्हें और आश्रम का मोह पैदा हो, आश्रम करने के लिए शुभ नाम, शुभ नाम बांधू, अशुभ नहीं बांधू, ऊंच गोत्र बांधू, नीच गोत्र नहीं बांधू, क्यों सब का नए और टीकाएं पढ़ी, उनमें ऐसा लिखा है कि इससे हमको ये प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणा मिलना चाहिए, ये करना चाहिए कि हम ये अशुभ करनी बांधे और शुभ बांधे और ये करें वो करें, ये करें ये करें ये करें। देखो कितना कितनी मर्म की बातें हैं, वैसे उसमें गहराई से सोचें तो है कि ज्ञानाबिनी कर्म के बंद का कारण कैसे बंधेगा, प्रदोष निन्नम है ना, दसना बननी का कैसे होगा, वेदनी का कैसे, साता वेदनी का कैसे, असाता वेदनी का कैसे, सबका बताया कि नहीं बताया, मोहिनी कर्म का कैसे बनेगा, आयु कर्म का कौन का फलानी आयु से। तो जहां ये लिखा है कि भगवान रमपति के सम नारक आयुषा, तो वो तो नरक आयु के बंद से उसे नहीं जाए नरक में, इसके लिए बहुत आरंभ परिग्रह मत रखो। और जहां अल्प आरंभ परिग्रह से मानुष से लिखा है तो अल्प आरंभ परिग्रह रखो, उसका आश्रम करो, क्यों ये प्रेरणा देने के लिए किया है। और देवगति का लिखा कि देवायु का बंधन में काय से होता है आश्रम, तो देवायु को आश्रम करने के लिए प्रेरणा देने के लिए लिखा है कि तुम ये बांधो ये नहीं बांधो, ये लिखा ना, शुभा पुण्य से और अशुभा, सही बात है कि शुभ भावों से पुण्य कर्म का आश्रम होगा और अशुभ भावों से पाप का होगा, ये तो सही है कि अशुभ भावों से पाप का आश्रम होता है।
लेकिन शुभ भावों से पुण्य का आश्रय होता है, ये सही है क्या?
है? तो पढ़ा होगा तत्वासी, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तुम्हारे बुद्धिजीवियों ने पढ़ाया होगा, परीक्षा भी पास की होगी और टॉपर्स भी तुम्हीं में से होते हैं, टॉपर्स भी हुए होंगे। क्यों? क्यों साथ में ये भी पढ़ा अजित भाई के नहीं कि एक आयु कर्म को छोड़कर शेष सात कर्म का आश्रय प्रति समय होता रहता है, चाहे वो शुभ भाव का काल हो चाहे अशुभ भाव का काल हो। तो शुभ भाव के काल में ज्ञानवर्णी का आश्रय होता है, दर्शनावर्णी का आश्रय होता है, अंतराल का आश्रय होता है, चारित्र मोहिनी का भी होता है। और यदि उस वक्त सम्मा दर्शन नहीं हुआ हो रमेश भाई, तो दर्शन मोहिनी को भी हिस्सा मिलता है। जैसे तुम सर्वोत्कृष्ट स्वभाव कह रहा है, उसी में से मिथ्यात्व तो बनता है उसी काल में। क्यों ये बताने की जरूरत है शांति जी के? नहीं तो उसके तो मुंह में पानी भर ही आता है, शुभा पुण्य से अथवा पापा से अपन शुभा 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 शुभा। क्यों? लेकिन मिथ्यात्व को भी हिस्सा मिलेगा, और मिथ्यात्व को इतना सा भी हिस्सा मिल गया तो वो कितना, इतना सा एक बूंद जहर एक बाल्टी दूध में एक भगोना खीर में के लिए पर्याप्त है जहरीला बनाए। वो जहर है कि अमृत है बताओ? एक बूंद ऐसा कोई अमृत नहीं है कि एक बूंद डालने से वो पूरी खीर अमृत हो जाए, लेकिन ऐसे जहर हैं कि एक बूंद डालने से सारी खीर जहर हो जाए। अमृतत्व तो से बड़ा और जहर क्या है बोलो? अब वो डलना क्या है? मैं सूत्र जी की टीका लिखने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ये जो बातें मैं आपको रख रहा हूं, ये बातें भी सब जगह नहीं है, बहुत जगह हैं, उसमें ऐसा नहीं कि नहीं है, और हैं तो इतनी इनडायरेक्ट हैं, मेरे उन्होंने गिना दी और कह दी, लेकिन तो खोल खोल के नहीं बताएं तब तक। इस स्थूल बुद्धि वाले लोग हैं ना पंचम काल के, वो उनकी नहीं पहुंचती है जैन तक। नहीं तो हम कहां से बता रहे, उसी में तो लिखी है ना कि तुम इतने गिना रहे, पूरा अध्याय लगा दिया तुमने, छठवां का छठवां अध्याय, एक एक कर्म ऐसा करने से जीव बनेगा, ऐसा करने से जीव बनेगा, ऐसा करने से जीव बनेगा, और ये सब कह करके अंत में कह दिया कि चाहे तुम शुभ भाव करो चाहे अशुभ भाव करो, सात कर्मों का बंध तो निरंतर होता ही है। क्यों? ये सात कर्मों का बंध कैसा होता है? क्या होता है इस सात कर्म कहां से आ गए? देखो ऐसा है कि बंध चार प्रकार का होता है, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव। तो ये फला कर्म का बंध है, तो ये कौन से बंध में आया? क्योंकि जब हमारे हम प्रति समय जो हमारे भाव हो रहे हैं ना, जो भी मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व सहित भाव हो रहे हैं, जो मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्यात्व रहित भाव हो रहे हैं, तो उस वक्त जो एक ग्रुप पूरा, जैसे शास्त्रीय भाषा में समय प्रबद्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म के परमाणु आत्मा के साथ आकर के बनते हैं, तो वो परमाणु तो इकट्ठे ही बनते हैं। उसमें तो ये ज्ञानवर्णी के दर्शनवर्णी के अभी ऐसा बंटवारा हुआ नहीं है, हालांकि इसमें ऐसी वर्गणाएं तो रहती हैं, निश्चित रहती हैं, लेकिन वो एक लौट का लौट आया, तो प्रदेश बंध में तो ऐसा भेद पड़ा नहीं। अगर प्रकृति बंध हुआ तो उसमें भेद पड़ा कि जो ज्ञानवर्णी को मिली ये दर्शनवर्णी को मिला, उसमें जो हिस्सा आयु कर्म को छोड़कर सात कर्मों का मिलता है ना सबको, फिर अब आयु क्रम बनना शुरू हो जाएगा तो उसे भी मिलने लगेगा, है ना। तो वो हिस्सा तो प्रकृति बंध में हुआ, वो तीन बंध की बात नहीं है, प्रकृति बंध में इस कर्म से, तो इस एक कर्म की प्रकृति को मतलब हिस्सा मिल जाएगा। माने मिलना तो सबको ही है हिस्सा, लेकिन उसमें उसे ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा। मतलब ये तो कहा ना, कुछ भी हो, भाव तुम्हारे कैसे ही हों, शुभ अशुभ और चाहे वो ज्ञाना बनी कर्म बांधने के भाव हों, लेकिन वो हिस्सा तो सबको ही मिलना है उनमें, लेकिन उसको जरा ज्यादा मिल जाएगा, इतना ही तो है क्यों। अब ये कहते हैं कि जो ये कह रहे कि जब बुद्ध सब सातों ही में बट गया, तो कहते हैं काय में बंध, तो अनुभाग नाम का जो बंध है उसका जो आता है, तो अनुभाग बंध में फर्क पड़ेगा उसका, कि तुम्हारे यदि साता बेदनी वाले हैं तो साता बेदनी वाले कर्म में ज्यादा अनुभाग पड़ जाएगा, है। यदि ज्ञान ज्ञान के संबंध में तुमने विघ्न पैदा किया है तो तुमको ज्ञान बढ़ने के संबंध में ज्यादा अनुभाग पड़ जाएगा, अनुभाग में रस शक्ति, ये फर्क है उसमें। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे बंटवारी बंटवारी से ऐसे बता करके हमको क्या करना चाहते, हम क्या करें, तब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हम काय के लिए ये सब चीज बता रहे हूं, काय के लिए इसकी डिटेल में जाए क्या। तो तुम क्या समझ रहे, इसलिए बता रहे थे कि तुम सोच सोच के इतने बांधो, इसको इतना डालू, इसको इतने डालू, इसके इसके लिए तुम्हें बता रहे हैं। अरे भाई, जैसे अपने नरकों में दुख बताते हैं ना, तो यहां पर इसने परस्त्री सेवन किया था, तो वहां पर धड़क धड़कती हुई लोहे की एकदम गर्म पुतली, उसे चिपका के बता रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे यहां पर किसी ने परस्त्री सेवन किया था तो वहां पर वो पुतली चिपकाई जाती हो, और यहां पर जिसने दूसरे को मारा सब पीला था तो उसे उसे पीला जाता हो, ऐसे बताते ना, नीचे नीचे और ऊपर नीचे ऊपर चित्र बनाकर। क्यों कि इस टाइप के पाप हमारे जीवन में होते हैं, तो उस टाइप के पाप का फल तुमको ऐसा मिलेगा, तो उन पापों से तुम्हारी विरक्ति थोड़ी हो, बस इसके लिए है वो वहां तारतम्य कुछ नहीं है। सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ भगवान ने इसीलिए कहा है कि तुम वैसे दुष्कर्म छोड़ो, तो ऐसे नहीं तुम्हें तुम महसूस करते हो कि मेरे बहुत कम ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान मुझे बहुत कम है, इतना मैंने इतना स्वाध्याय किया मेरी समझ में नहीं आता, तो कहते तुमने किसी को ज्ञान में विघन डाला होगा क्यों, इसलिए तुम्हें ऐसा हुआ है, तो कम से कम ये ज्ञान का विघन डालना बंद करो क्यों। अब ये क्या होता होगा क्यों बबलू, कि जैसे कि मेडिकल कॉलेज को खुलवाया था और उसको हमने बंद करवा दिया, तो हमें मेडिकल का बंद होगा, मेडिकल की बातें हमारी समझ में नहीं आए, ऐसे क्या मैं बंद करूंगा क्या मेडिकल करवा पर। अरे वो ज्ञान कहा है, वो तो अज्ञान है, बोले हिंसक मतलब ऐसे जो काम आप समझ गए ना। अरे वहां तो स्पष्ट ही सीधा सच्चा है कि उसमें लिखा ना, पाठशाला चलती हो तो बंद करा देना, ये कहां लिखा मेडिकल कॉलेज बंद कराना या नहीं कराना कि खोलना, तो खोलोगे क्यों, तुम पाठशाला ज्ञान का प्रचार करोगे तो ज्ञान बनी कर तुमको ऐसा ज्ञान प्रकट होगा कि जिन तत्व ज्ञान तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगा वो तुम्हारा आत्मकल्याण का प्रसंग बनेगा क्यों। ये उदाहरण दे ना, अब वो शिक्षा के क्षेत्र तो ऐसे भी है ना, जो महाहिंसक हैं, अणुबम बनाना, एटम बम बनाना, ज्ञान का सारा असर लगाना, उनके भी तो ज्ञान बनी करूंगा सेवसम हो गई ना है? तो जिनने खूब दूसरों को पढ़ाया हो, जिनने विघ्न पैदा कर दिया होगा कि तुम अणुबम नहीं बनाओ, कि हम नहीं बनाने दे रहे ना ईरान को, तो अमेरिका को हो जाएगा वो ज्ञान बनी करम का बंद, कभी अणुबम नहीं बना सकेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी बातें आप पढ़ रहे हैं तो अपने अपने बुद्धि गिरवी थोड़ी रखी है, अपन को भी देखो सोचना चाहिए कि ये एक कैसे संभव है, प्रैक्टिकल क्या संभव है, क्या करना चाहिए, क्या 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 कहना चाहते हैं, अंत तो हम वहीं पहुंचेंगे कहां कि भाई ये ऐसी ऐसी दुष्प्रवृत्ति जो हमारी हैं कि हम ज्ञान में विघन डालते, दर्शन में विघन डालते, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, है ये भाव हमारे जीवन में जितने बच्चे हैं तो अच्छी बात है, बच्चे तो अच्छी बात है, ये भाव होए तो अच्छी बात है, नहीं है क्या? फिर बताओ कोई एक कर्म बांधने दूसरा कर्म बांधने में बात हो गई ना, तो कर्म बांधने हम तो बुरे कर्म नहीं बांधना, अच्छे बांधना, तो दिक्कत तो यह है कि जब कर्म बनते हैं तो रास्ता साधनों का खुलता है, वो घातिया कर्मों का भी खुलता है और मिथ्यात्व का भी खुला पड़ा है जब तक समय दर्शन नहीं हुआ है। तो यदि कुछ इसमें कुछ करना है, धर्म के हिसाब से कुछ होना है, तो सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। अब वो हमने कोई उसके बारे में सोचते ही तक नहीं है, कितने उपवास करना है, कितने व्रत करना है, कितने अर्घ चढ़ाना है, कितना क्या करना है, तुम जो बताओ वो समर्पण कर सकते एक से एक बढ़िया। कि उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या है होना चाहिए, समझ रहे ना, क्योंकि वो वहां पर हम करते जा रहे हैं उतना वो जेबरी चढ़ती जा रही है, अंधा माटे जेबरी, और वो क्या कहते हैं वो नहीं दूसरा है, अंधा जो रस्सी को बढ़ता है ऐसा बढ़ाता जाता है, पीछे से गाय चबा चबा के खाती जाती है, मुझे पता ही नहीं है कि कितनी बढ़ी गई कितनी चली गई, क्योंकि कहाँ क्या हो रहा है, कैसी प्रक्रिया, मतलब कहाँ हो रही है, कैसे करना चाहिए, जब तक नहीं हो तो वो हमारे शत्रु को वो मिल रहा है खुराक, उससे हमारे पेट में कीड़े हों, हम कितनी बढ़िया बढ़िया माल मसाले खाएं तो वो सब कीड़े को खुराक मिलती है और वे कीड़े मस्त होते जाते हैं, हमारे शत्रु पेट में पल रहे हैं ना वे मस्त होते जाते हैं, पहले भी कीड़े खत्म हों तो फिर जो खुराक होगी वो हमें फायदा पहुंचाएगी। तो ये मिथ्यात्व नाम का महा कीड़ा पेट में पड़ा है और तुम जितना करते हो सब वो सब वो खा जाता है, उसका बंद होता है। क्या है बंदगी, क्या है ये आसब, यहां तक ये भी पढ़ देते हैं आसब दुखकार घनेरे, ये सभी हैं, है ना, और ये भी ये कहते हैं कि ए ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तरिए, तो पूरे आसब के बारे में कमेंट्स है क्या, चले पुण्या सब के बारे में, पापा सब के बारे में है, और हमारे पुण्य ने लिख दिए पुण्यासर्व कथा कोश, ऐसी कहानियों का संग्रह कि जिनसे पुण्य का आश्रव हो, माने वो शास्त्र के नाम में भी हमको आश्रव की महिमा बताने वाला हमने कहानियां बनाई, क्या पुण्यासर्व कथा कोश, ये आश्रव निरोध कथा कोश क्यों नहीं लिखा, यहां ये कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना, भूतकाल का क्या प्रतिक्रमण, भविष्य का प्रत्याख्यान और वर्तमान की आलोचना, तो हमने तीनों काल में बांध दी, एक ही काल में एक ही समय में एक ही क्रिया से तीन चीजें हो रही, इन्हें अलग अलग काल नहीं है, कि उसी में हमारे भूतकाल का जो हुआ था गलतियां जीवन में उसके कर्तृत्व की अस्वीकृति, उसके भोक्तृत्व की अस्वीकृति, यह है कर्म और कर्म फल चेतना से निवृत्ति, समझे ना, इनके एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व की अस्वीकृति, और वर्तमान में जो हो रहे अभी उनसे भी हो तो रही हैं, हो तो गए ही, उन्हें रुकना तो संभव नहीं है, तो उससे भी कर्तृत्व भोक्तृत्व की अस्वीकृति, और भविष्य में नहीं होने की, जो मैंने कहा ना कि कहां से शुरू की थी बात, कभी भविष्य में हम ऐसा करते जाते हैं और कहते जाते हैं, तो ऐसा तो होगा ना, चौथे गुणस्थान से लेकर के और तेरहवें गुणस्थान तक पहुंचेंगे हम, तो नहीं तो इतने गुणस्थान कैसे बन जाते, यदि वो एक झटके के साथ सब छूट जाता तो सीधा में ज्ञान माने होते ही सब केवल ज्ञान हो जाता, तो इतने गुणस्थान बीच में क्यों बनते, वो तो वही है ना, लेकिन कुछ बिल्कुल जीरो ही नहीं छूटे तो नहीं चलेगा। जैसे कि आपने एक मकान खरीदा 1 करोड़ रुपए में, तो सौदा पक्का करने के लिए 1 लाख रुपया तो आपको अभी देने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो दिए बिना और हम खरीद लिया, नहीं, वो गवर्नमेंट भी नहीं मानेगी, अदालत भी नहीं मानेगी, जैसे बोलते हैं ना पेशगी, क्या जो भी आप नाम देते हो है? करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और बाकी हम धीरे धीरे चुका देंगे, फिर ऐसे बनाते हैं कि ये बनेगा, अभी कुछ नहीं है, वो जमीन भी नहीं है, जमीन से भी उसने जमीन वाले से एग्रीमेंट किया है कि ये जमीन हमको देगा, हम इसके हिसाब से तेरे को धीरे धीरे पैसा देंगे, जब पूरा हमारा मकान बन बना के बिक जाएंगे तब तक पूरा पैसा देते रहेंगे, वो भी उसके बाप की नहीं है। फिर उसने नक्शा मुक्शा बना बनू करके और उसने कल्पना लोक का एक फ्लैट बेच दिया, और उसको कहता कि ज्यो ज्यो बनेगा क्यों तुम हमें पैसा देते जाना, तो हम इकट्ठे नहीं लेते तुमसे, तुम जितने देते जाओगे उतना हम बनाते जाएंगे, तो जितना हम देंगे पैसा उतना बनाओगे, तुम्हारा 8वें माले पे है, तो जब पहला माला डलेगा तो आपको 8वां हिस्सा पैसा देना पड़ेगा। हमारा माला तो अभी है ही नहीं, मतलब पहला माला डलेगा तो 4 माले हो जाएंगे तो आधा पैसा देना पड़ेगा, कितना इतना हो जाएगा, क्यों जैसा वहां होता है ना ऐसा यहां है, मैंने श्रद्धा के लेवल पर मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक उतना तो होना चाहिए, बिल्कुल जीरो नहीं हो, माने प्रवृत्ति हटे ही नहीं, क्या हमारे पुराने कर्मों का प्रतिक्रमण, वर्तमान की आलोचना, भविष्य का प्रत्याख्यान हुए ही नहीं तो काम नहीं चलेगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए और बाकी धीरे धीरे हो जाएगा। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात यहां कर रहे हैं, पढ़ो कौन सी गाथाएं पढ़ रहे थे, 4 गाथाएं पढ़ो, 83, 84, 85, 86। हाँ बातें बहुत मार्मिक हैं। वो ये कहते हैं कि भविष्य में, भूतकाल में जो भी हमने पाप हुए, वर्तमान में हो रहे, भविष्य में होंगे, तो अभी 2 काल के पहले लिए, भूत के और भविष्य के, वर्तमान का बाद में लिया, क्यों कि जो हो गए और हो के वे खत्म भी हो गए, और हो सकता है उनका फल भी हम भोग चुके हों, हम तो पूरे पूरे भूतकाल की आलोचना कर रहे हैं ना, जो ऐसा हुआ था हमारे उसमें, मैं उसका करता करता, और भविष्य में नहीं हूं, तो अब भविष्य में नहीं हूं तो अभी अभी भविष्य तो आया नहीं, तो वे अभी हुए ही नहीं, उनका तो बिल्कुल, इनका तो कभी अस्तित्व था, उनका तो अभी अस्तित्व आया ही नहीं, उन दोनों की वर्तमान में उसने किया क्या कि जो है ही नहीं उसे त्यागा, और जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसका त्याग कर दिया, भविष्य में नहीं हो, कैसे त्याग का कैसे स्वरूप है, मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा क्या। देखो कि अभी आपको आप ध्यान नहीं जाता है, कभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, क्या होता है ब्रह्मचर्य व्रत, यानी ढंग से भी नहीं आना चाहिए, बच्चा बच्चा जानता है, अब कैसे पंडित हो? नहीं नहीं बताओ, थोड़ा जानते हो तो बता दो ना कि हम शादी नहीं करेंगे, गंधर्व विवाह भी नहीं करोगे, रखेल भी नहीं रखोगे, यही मतलब है सबका। हाँ सब 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 हुआ, ठीक है ठीक है। तो तुम शादी नहीं करोगे, रखेल नहीं रखोगे, तो ये क्या क्या छोड़ा तुमने? तो ये शादी हुई नहीं है, अभी की नहीं है, तो छोड़ा क्या है? कि भविष्य में नहीं करेंगे, इसका नाम है ब्रह्मचर्य व्रत लेना। लिया क्या ये तो बताओ मुझे, वर्तमान में तुम्हारे हाथ में क्या आया? वो संकल्प ही तो है जो तुम्हारी नई गम नए का दिशा है कल्पना लोक का, कि तुमने संकल्प आज किया है, कल वो पूरा होगा कि नहीं होगा, उसकी नई गम नए में उसकी नियम नहीं होता, होगा चाहे नहीं होगा, वो प्रस्त बनेगा चाहे नहीं बनेगा। हम तो प्रस्त के विकल्प से जा रहे हैं तो कह दिया प्रस्त ला रहे, खत्म। उसकी जांच परख नहीं की जा सकती है, है? और जो होता ना कितने कितने व्रत ऐसे हम लेते हैं, है? हम एक दिन में चक्रवर्ती तो छोड़ देते हैं, है? खाने को है नहीं कल का व्यवस्था, इसलिए तो छोड़ते हैं कि छोड़ देंगे तो समाज व्यवस्था कर देगी, नहीं तो क्या करेंगे, है? तो जो नहीं है उसको छोड़ देंगे, उससे हम लोग सारी पता और बड़े बड़े पद आ जाते हैं। भविष्य में नहीं करेंगे, यही तो अर्थ है ना, बोलो। हमने अनुमित लिया परिग्रह परमाणु अनुमित, हमारे पास 50,000 रुपया है, हमने कहा हम 25 लाख से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो क्या छोड़ा? कि 25 लाख से ज्यादा कमाई होने लगेगी तो हम तब नहीं करेंगे। मैंने छोड़ने में कुछ है, कल्पना लोक की बात है। अब खूब हम सोच लेते हैं कि कहीं ये आना जाए, ऐसा ऐसा मौका न जाए, आने लग जाए तो क्या करें, कोई हमें अरबपति गोद ले लेगा तो क्या करेंगे? हम नहीं लेते। अरे क्या अभी कल्पना लोग के उतना उतना रख लेते हैं, और उतना भी परिग्रह प्रमाण रखना में पसीना छूटता है, नहीं छूटता है तो अभी ले लो, सब जाने संभावना नहीं है बिल्कुल, क्या समझ गए ना? मैंने कैसे विचित्र स्थिति है, सारा भाव का खेल है ना, भाई संयोग के होने का कहां सवाल है इसमें। तो एक उन्हें भूतकाल न जो है नहीं उसको त्यागा, जो हो गया नष्ट हो गया, और जो भविष्य में नहीं करेंगे ऐसा, और वर्तमान में जो एक समय में हो रहा है उसके हम ज्ञाता दृष्टा है, क्या उसे छोड़ो? क्या छोड़े हैं उसे? जान लिया तो है कि ऐसा हो रहा, नहीं होगा तो जान लेंगे कि नहीं होगा, अब ये है। और ये प्रत्येक समय में ये तीनों हो रहे हैं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। अब क्या हो क्या रहा, तो एक आता है किसी की समझ में कि ये क्या है, क्या खेल है, और इसको कितना बड़ा महत्व है अपने। अब वो ये कह रहे कि जो हमने भविष्य काल के दोषों के बारे में पश्चाताप किया तो ये प्रतिक्रमण है, ऐसा नहीं लिखा। देखो ध्यान से, वो आत्मा प्रतिक्रमण है, वो आत्मा आलोचना है, वो आत्मा प्रत्याख्यान है, क्योंकि वो पर्याय द्रव्य से अभेद है, ये विकल्पादि पर्याय ही द्रव्य से अभेद है। तो वो कहते वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, और आत्मा ही आलोचना है। तो वो आत्मा को क्या करें और क्या नहीं करें, कहां लिख रहे ये प्रतिक्रमण अलग है? देखो ऐसा लिखा ना, शुभ अशुभ कर्म अनेक विधि जो किए हैं गत काल में, उनसे निवर्तन जो करे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। उनसे निवर्तन तो निवर्तन को प्रतिक्रमण कहो ना, उनसे निवर्तन जो करे तो वो निवर्तन प्रतिक्रमण है, ये कहो ना। पढ़ो फिर द्वारा पढ़ोगा तुम्हें सब, फिर ध्यान देना जो मैं बात कह रहा हूं।
Thank you.
सब आत्मा है, चारित्र भी आत्मा है, प्रतिक्रमण भी आत्मा है, प्रत्याख्यान भी आत्मा है, आलोचना भी आत्मा है। दो जगह जीव लिखा, दो जगह आत्मा लिखा, ये क्या चक्कर है? क्या फर्क है जीव और आत्मा में? अरे कुछ फर्क नहीं है, कम से कम यहां तो कुछ फर्क नहीं है। वो आत्मा जगह नहीं थी आत्मा के लायक। आत्मा में चार मात्राएं हैं, जीव में तीन मात्राएं हैं, तो इसलिए जीव लिख दिया। बस और क्या है, देखो है ना, वह आत्मा प्रतिक्रमण है। तो लिखा उससे निवर्तन जो करे वह आत्मा, और जगह नहीं प्रत्याख्यान है, तो जीव वह जीव प्रत्याख्यान है, बन गई ना जगह, समझ गए ना? बस ये है, उसमें एक मात्रा कम है जीव में, तो जहां तीन मात्रा की गुंजाइश है तो जीव लिख दिया, चार मात्रा की गुंजाइश है तो आत्मा लिख दिया, समझे? और कुछ नहीं है। अब इस तरह से अब गाथाएं हो गई, कल ये 224वां कलश, और जिसके जी उत्थानिका का कलश है वे गाथाएं अपन कल पढ़ेंगे।